पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र और रूही किस करते हैं। रूही बाथरूम में भाग जाती है और रुद्र महेश से परेशान हो जाता है। रुद्र रूही को बाहर आने की धमकी देता है। अब आगे, रुद्र रूही को खाना खिलाता है, जिसके बाद रूही शर्माती है और बिस्तर पर चली जाती है। रुद्र मुस्कुराता है और अपने स्टडी रूम में जाता है। अगली सुबह देवांश दिशा का इंतजार करता है, लेकिन वो ऑफिस नहीं आती। देवांश गुस्सा हो जाता है और मयंक को दिशा को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन दिशा कॉल काट देती है। देवांश मयंक को जाने के लिए कहता है और खुद देखने का फैसला करता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 160। अब आगे, देवांश का कैबिन। दिशा की कॉल ना उठाने पर देवांश गुस्से में अपने चेयर पर बैठा हुआ था और फिर गुस्से में ही बोला, गुड गर्ल, ये लास्ट बार है जो मैं तुम्हें दोबारा कॉल करने जा रहा हूँ। अगर इस बार भी तुमने कॉल नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसीलिए गुड गर्ल, बेहतर यही होगा कि इस बार तुम कॉल कट करने की गलती से भी मत करना। इतना बोल वे अपने फ़ोन से दिशा को कॉल लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ, अनाथ आश्रम में, दिशा जो बेड पर अभी भी उसी तरह लेटी हुई थी, तभी उसके कानों में दोबारा रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुन उसके चेहरे पर गुस्सा उमड़ आता है और वे अपने चेहरे पर गुस्सा लिए बोली, इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि जब मैं कॉल नहीं उठा रही तो इसका मतलब साफ है कि मुझे इन लोगों से कोई बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे बार बार कॉल कर परेशान कर रहे हैं। बहुत हो गया, अब मैं इन सबका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ, फिर करते रहें ये लोग मुझे फ़ोन। इतना बोल वे अपना मोबाइल उठा उठकर बैठ जाती है और जैसे ही कॉल कट करने वाली होती है वैसे ही वे देखती है कि कॉल गलती से रिसीव हो चुका है। साथ ही साथ इस बार फ़ोन मयंक ने नहीं बल्कि देवांश ने किया था, जिसे देख दिशा के हाथ कांपने लगते हैं और वे जैसे ही कॉल कट करने वाली होती है वैसे ही उधर से देवांश की सर्द आवाज़ दिशा के कानों में पड़ती है, गुड गर्ल, कोशिश भी मत करना। अगर इस बार बिना मेरी बात सुने तुमने कॉल कट किया तो ये ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ही किसी और के लिए। देवांश की बात सुनकर दिशा के हाथ देवांश का कॉल काटते काटते रुक जाते हैं, साथ ही साथ उसके चेहरे पर डर और परेशानी दोनों झलकने लगते हैं। वहीं देवांश दिशा को कॉल न करता हुआ देख दोबारा अपनी सर्द आवाज में बोला, गुड गर्ल, अगर तुम अगले आधे घंटे में ऑफिस नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हें वहां से बिना तुम्हारी कोई बात सुने तुम्हें सबके सामने गोद में उठाकर ऑफिस के अंदर अपने कैबिन तक लेकर आऊंगा। उसके बाद गुड गर्ल, अगर कोई तुमसे सवाल करेगा तो तुम सबको उस सवाल का जवाब देते फिरना कि आखिर मैंने तुम्हें गोद में उठाकर क्यों रखा हुआ था। गुड गर्ल, अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम अपने पैरों पर चल के खुद आना चाहती हो या मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर खुद आऊं। मुझे उम्मीद है गुड गर्ल कि तुम गुड डिसीजन ही लोगी। इतना बोल वे कॉल कट कर देता है। वहीं देवांश के कॉल कट करके ही दिशा अपना मोबाइल वहीं बेड पर फेंक लेट जाती है और रोते हुए कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर, आप यूं बात बात पर मुझे धमकी नहीं दे सकते, आप इस तरह मेरा फायदा नहीं उठा सकते। इतना बोल वे दोबारा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, परी और अर्जुन रूही को जबरदस्ती अपने साथ मॉल लेकर आ गए थे, जिसे देख रूही गुस्से में बोली, तुम दोनों के मॉल घूमने के चक्कर में मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी, फिर मैं उन सवालों को कैसे समझूंगी। रूही की बात सुनकर परी रूही के कंधे पर मारते हुए बोली, रूही चिल यार, अगर एक दो क्लासेज आज मिस भी हो जाएगी तो तू कौन सा कॉलेज में फेल हो जाएगी, तू चिंता मत कर, हमेशा की तरह इस बार भी तू कॉलेज में टॉप ही करेगी। वैसे भी तुझे उस जय को कल के लिए थैंक यू भी तो बोलना था, तो उसके लिए तू एक अच्छा सा गिफ्ट ले ले, फिर उसे थैंक यू बोल देना, देखना उसके बाद वे पक्का मान जाएगा। परी की बात सुनकर अर्जुन भी बोला, हाँ रूही, परीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है, अब तू ज्यादा मत सोच, जल्दी चल कुछ ले लेते हैं, और तू अपने लिए भी कुछ ले लेना, वैसे भी देवांश भाई ने हमें ये क्रेडिट कार्ड दिया है और कहा है कि हम जितना मन चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हैं, तो चल तुझे अपने लिए भी जो जो पसंद आए वे तू ले लेना। इतना बोल वे परी और रूही का हाथ पकड़ता है और दोनों को ले शॉपिंग करने लगता है। वहीं रूही सभी चीजों को देखते हुए सोचती है कि वे जय के लिए क्या ले, तभी उसकी नज़र एक वॉच पर जाती है जो काफी खूबसूरत था। उस वॉच को देखते हुए वहां पर जाती है और उसे उठाकर देखने लगती है तो वे देखती है कि उस वॉच की कीमत 1 लाख थी, जिसे देख वे तुरंत उस वॉच को रखते हुए बोली, इस वॉच में ऐसा भी क्या खास है जो ये 1 लाख का है। इतना बोल वे वापस से परी और अर्जुन के पास आ जाती है, क्योंकि उसे अब तक इतना पता चल गया था कि ये एक ब्रांडेड मॉल है और उसकी बजट तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो वे ले सके। परी और अर्जुन के पास आ वे देखती है कि उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली है। वहीं परी रूही को देखते हुए बोली, रूही तुझे कोई गिफ्ट पसंद आया। परी की बात सुनकर रूही मुंह बनाते हुए अपना सर नामे हिला देती है, जिसे देख परी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि रूही को कुछ पसंद क्यों नहीं आया है, क्योंकि वे जब भी बड़े और ब्रांडेड मॉल में आती थीं तो रूही हमेशा ऐसा ही कहती थीं। जिसे समझ परी एक खूबसूरत की साड़ी रूही को दिखाते हुए बोली, रूही ये साड़ी देख, तुझ पर ये बहुत अच्छी लगेगी, और अगर भाई ने तुझे इस साड़ी में देख लिया ना तो वे तुझे देख बिल्कुल पागल हो जाएंगे। परी की बात सुनकर रूही उस साड़ी को वापस रखते हुए बोली, तेरा वे शैतान भाई पहले से ही पागल है, मुझे उन्हें और पागल नहीं बनाना। अब तेरा शॉपिंग हो गया है तो हम चलें। रूही की बात सुनकर परी रूही को छेड़ते हुए बोली, रूही मैं तो तेरी दोस्त हूं ना, तो मुझे बता क्या भाई ने अभी तक तुझे किस किया और किसके बाद वे सब किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। परी की बात सुनकर रूही की आंखों के सामने कल रात की गई रुद्र की सारी हरकत याद आने लगती है, जिसे याद कर वे हड़बड़ा जाती है और परी से अपनी घबराहट छिपाते हुए बोली,
परी तू पागल हो गई है, तुझे लगता है कि तेरा शैतान भाई ये सब भी कर सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझसे ये सब फालतू सवाल करने बंद कर, वरना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। रूही को चिढ़ता हुआ देख परी हंसते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरी इतनी खूबसूरत दोस्त के साथ रहकर भी भाई पहले की तरह अनरोमांटिक ही रह जाएंगे।